इसके साथ ही उपदेश मंजरी के अंतर्गत सभी प्रसंग समाप्त होते हैं। चर्चा कर्म की चल रही थी, कितना बलवान है कर्म, अति बलवान। स्वामी जी महाराज इसके बल को देख के ही कहते हैं, कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग, इक्षु रस की मधुरता मिले न भूकर भांग। सीखना सिर्फ यही है, परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं, देवी और सचनों शैतान से भी डरने की जरूरत नहीं, अपनी कर्मी से डरने की जरूरत है। कितना बलवान है कर्म, बंदा बंदा जानता है, परमेश्वर सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, मानव सब कुछ करने में समर्थ है, कुछ भी कर सकता है। यहां तक भी कहा जाता है कि उसका विधान शास्त्र उससे बड़े नहीं है, हम ऐसा मानते हैं, वे ऐसा नहीं मानता, अपने विधान को उच्च मानता है। विधान शास्त्र इनको अपने से बड़ा मानता है, मानो इनकी इज्जत करता है परमात्मा। इसी ढंग से कर्म की भी, कर्म सिद्धांत किस प्रकार का है, परमेश्वर सर्वसमर्थ होते हुए भी देवियों सज्जनों ऐसा तो नहीं कर सकता किसी ने शुभ कर्म किया है तो उसे फल अशुभ दे दे, है ना, ये नहीं कर सकता। सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है, लेकिन किसी ने कोई भला काम किया है उसके बदले उसे दुख दे, ऐसा वह नहीं कर सकता। और किसी ने पाप कर्म किया है तो उसके बदले वे उसे सुख दे दे, ऐसा भी वह नहीं करता। तो स्पष्ट है ना, कर्म फल कितना बलवान है, ये परमात्मा का विधान ही है। दिव्य सचिन दुख दे के सुख की इच्छा रखनी, ये ईश्वर का विधान नहीं है। आप अपने परिवार को दुखी रखते हो, परिवार आपके कारण दुखी है, दफ्तर जहां आप काम करते हो वह आपसे दुखी है, और बदले में आप सुख की अपेक्षा करो तो ये परमात्मा का विधान नहीं है। वह आपकी भक्ति व आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेगा, ये परमेश्वर का विधान है, इसका वह पूरा आदर करता है। अनुभव साक्षी है कि ऐसा वह करता है, ऐसा होता है। दुख देख के किसी को भी, किसी का दिल जला के, जहां आपकी इच्छा है कि इसका दिल जले, इस प्रकार से यदि आपने किसी का हृदय जलाया है, किसी को दुख दिया है, किसी को तड़पाया है, उसके बदले में आपको सुख मिल जाए, ये परमात्मा का विधान नहीं है। फल बदल नहीं सकता परमात्मा, तो यही लगता है कि फल बहुत बड़ा है, लेकिन फल भी तो कर्म के अधीन है, इसलिए यही स्वीकार करना होगा, कर्म बहुत बलवान है। अतएव कर्म करो ऐसे भले जैसे फल की मांग, स्वामी जी महाराज की ये पंक्तियां सदा याद रखने योग्य। आइए साधकजनों कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से देखें, जैसी कर्मी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, कोई दो राय नहीं इसमें। फल तरह तरह का है, एक तो इस प्रकार का, आज रात आपने कोई गंदी चीज खा ली, हो सकता है मध्य रात्रि ही आपको उठना पड़े उल्टी के लिए, वोमिटिंग के लिए दस्त लग जाए, ये उस कर्म का तत्काल फल है। ये तो थोड़ी देरी लग गई, ऐसा भी होता है, कभी ऐसी चीज भी खाई जाती है कि तत्काल वॉमिटिंग हो जाती है, कर्म का तत्काल फल। आज आपने परीक्षा दी, 3 महीने के बाद उसका परिणाम निकलेगा, कर्म फल 3 महीने के बाद मिलने वाला। फल की अवधि देवी सचिन परमेश्वर के अधीन ही है, कब कहां कितना क्या फल देना है सब उसके अधीन है। एक पौधा 3-1 महीने के बाद ही कुछ खाने को देता है, दूसरा 1 साल के बाद देता है, तीसरा पौधा है कोई वह 5 साल के बाद देता है, सेब का पौधा है 10 साल के बाद फल खाने को देता है। ये तो यहां की चीजें हो गई हैं, कुछ ऐसी चीजें भी तो होंगी जिसका फल इस जन्म में संभव नहीं तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और ये सत्य है, ये स्पष्ट दिखाई देता है हमें। सो यही मानना पड़ेगा कर्म सिद्धांत के अंतर्गत, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, कल अगला जन्म भी हो सकता है, उससे अगला जन्म भी हो सकता है। परमेश्वर सजा नहीं देता देवियो सचनो, उसके विधान में अत्याचार अन्याय नहीं है, वे मात्र हमारे लिए व्यवस्था करता है, जो किया है उसके फल का भुगतान इसका हो जाए ताकि इसका कर्म कटे। एक कर्म बोझ उठा के रखेगा तो इसका जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। ये सत्य है देवियों सज्जनों, हम सब अपने अपने कर्म भोग भोगने के लिए, फल भोगने के लिए यहां आए हुए हैं। या यूं कहिएगा, हम सब अपने कर्मों का ऋण उतारने के लिए यहां आए हुए हैं, जो हमारे सिर पर था उसे उतारने के लिए यहां आए हैं। उतर गया तो यहीं ही सब तब खत्म, और ले लिया तो फिर अगले जन्म की तैयारी होगी। प्रत्येक संत महात्मा समझाते हैं, भाई जो लिया हुआ है उसे ही उतारो, समझदार बनो और ना लो, ताकि ये जन्म मरण का चक्र, इतना पीड़ा देने वाला चक्र है ये, यही खत्म हो जाए। आज एक आचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए मेरा कोई हिसाब तब रहता है, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए मुझे एक बकरी की बलि देनी है, जाओ एक बकरा ले आओ। शिष्य गए, जाके एक बकरा ले आए, किसी छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं, आचार्य गुरु समझिएगा, सर्वोच्च पद पर अरूढ़ व्यक्ति, उसकी कथा है ये। शिष्य बकरा ले आए हैं, कहा इसे नहलाओ धलाओ, साफ सुथरा करो, तिलक इत्यादि लगाओ, गले में फूल माला, और तैयार करके मेरे पास ले आओ इसे, मैं फिर संकल्प करूंगा तब इसकी बलि दी जाएगी। शिष्य बकरे को तैयार कर रहे हैं, एक मिनट के लिए बकरा हंसा है, हंसने के बाद रोया है। शिष्य ने कारण पूछा, कहा अपने गुरु के पास ले चलो, वही कारण बताऊंगा। तैयार करके बकरे को हार इत्यादि डला हुआ है, तिलक भी लगा हुआ है, मानो बलि देने के लिए तैयार है। गुरु महाराज से कहा, ये अभी हंसा था फिर रोया है, और कहता था कि मैं कारण गुरु महाराज के सामने ही बताऊंगा, बताओ बकरे क्यों आप हंसे थे और क्यों रोए थे। कहा महाराज, पिछले जन्म में मैं ही भी आपकी तरह आचार्य ही था, मुझे भी इसी प्रकार बकरे की बलि देनी थी, बकरा इसी प्रकार तैयार किया हुआ था, बलि दे दी। 500 बार मुझे अपनी गर्दन कटवानी है उस कर्म के फल के अंतर्गत, एक बार मैंने उस बकरे की बलि दी थी, 500 बार बकरा बन के तो मुझे अपनी बलि देनी थी, 499 बारी हो चुकी हैं, ये 500 बारी है, इसलिए प्रसन्न हूं, मेरी बकरे की योनि खत्म होने वाली है, रोया इसलिए आपका हाल भी यही होने वाला है। गुरु महाराज ने ये बात सुनी, सुन के मन ही मन चिंतन मनन किया, कहा बकरे हम तेरी बलि नहीं देंगे, तुम मारेंगे नहीं। गुरु महाराज कोई बात नहीं, मुझे तो मरना है, आप नहीं मारोगे कोई और मार देगा, पर मुझे आज मरना है, निश्चित है, ये आज मेरी अंतिम बारी है, अंतिम दिन है मेरे बकरे की योनि का, उसके बाद मेरी योनि बदल जाएगी। उस एक कर्म का फल मुझे 500 बार भुगतना पड़ा, तब उसका फल पूरा हुआ। गुरु महाराज अपने शिष्यों को कहते हैं, इनके पीछे पीछे जाओ, छोड़ दो इसे, पीछे पीछे जाओ, रक्षा करना इसकी, किसे कोई मारे ना। शिष्य पीछे पीछे, बकरे को भूख लगी हुई थी, एक पहाड़ी पर चढ़ा है, वहां पर तरह तरह की छोटे छोटे पौधे झाड़ियां लगी हुई थी, बकरा अपने स्वभाव के अनुसार झाड़ियों से पत्ते खाने लग गया, तोड़ रहा है मुख से, खाता जाता है। इसी बीच जिस पहाड़ी पर वह खड़ा होके तो पत्ते खा रहा है, उसी पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर लुढ़का और गर्दन पर पड़ा और गर्दन कट गई, बिल्कुल वैसे ही कटी जैसे छुरी से कटी जाती है। कर्म सिद्धांत देवी सज्जनों कितना बलवान है और कितना सत्य है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। आज ये प्रश्न मत सोचिएगा, ये प्रश्न नहीं है, आज इसका उत्तर भी नहीं होगा। यदि हर एक ने कर्म ही अपना भोग ही भोगना है, कर्म का भुगतान ही भुगत रहे, तो फिर श्राम शरण जाने की क्या जरूरत है, फिर अमृतवाणी का पाठ इतनी बार करने की क्या जरूरत है, फिर संतों महात्माओं से आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है, फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है हमें, फिर परमेश्वर की कृपा का क्या स्थान है, वे आज का विषय नहीं है। बहरहाल याद रखिएगा, इन सब चीजों का अपना अनूठा स्थान है, वह बेकार नहीं है, जो कुछ आप कर रहे हो वह बेकार नहीं है। कर्म को कर्म नहीं काट सकता, आपने दान किया पुण्य होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी भूल हो गई, पाप हो गया, वही दान जिसको पुण्य होना चाहिए था, जैसे नृग, राजा नृग, एक ही गाय दो बार दान में चली गई तो ये पाप हो गया, इसका पाप दान कितना बड़ा, 1000 गाय दान कर रहा है लेकिन एक गाय दोबारा दान हो गई, इसको पाप, कर्म सिद्धांत इसे पाप मानता है और उसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिलने जा रही है। 1000 गाय उसके बाद फिर दान दी, फिर दान दी, फिर दान दी, लेकिन ये पाप कर्म कटा नहीं उन कर्मों से, ये समर्थ देवियों भक्ति में है, ये समर्थ ज्ञान में है, ये उन पुण्यों में नहीं है जो पुण्य हम रोज करते हैं, दान देते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उन पुण्यों में ये समर्थ नहीं है कि वह उस पाप को काट जाए, ये पाप काटने का समर्थ भक्ति में है, सत्संगति में है, समर्पण में है जो आप करते हो, अमृतवाणी पाठ में है जो आप करते हो, जप में है, ध्यान में है जो आप करते हो, वो उन छोटे मोटे पुण्य कर्मों में नहीं है वह समर्थ जो वह पाप कर्म को काटते हैं। समय तो हो गया है साक्षी पर, एक लघु कथा और शुरू कर देते हैं, कल जारी रखेंगे इसे। किस प्रकार से कर्म फल परमेश्वर व्यवस्था करता है। एक राजकुमार का विवाह हुआ है, आज शादी के बाद बहू सारी बारात राजा सब लौट आ रहे हैं। कुछ ऐसा मामला है कि आज शुभ नहीं है शादी के बाद अपने नगर में प्रवेश करना। अतएव रास्ते में एक बहुत बड़ा मठ आता है, आश्रम है, उसके मठाधीश उनको सूचना थी कि ऐसे ऐसे हम तेरे पास रात गुजारेंगे, व्यवस्था करके रखना, प्रबंध करके रखना, खाने पीने का विश्राम का प्रबंध करके रखा हुआ है मठाधीश ने। बारात आई है, बढ़िया भोजन परोसा गया है, विश्राम का प्रबंध पति पत्नी को अलग एक कमरे में रख दिया है। कुछ प्रथा के अनुसार पति के उस राजकुमार जिसका विवाह हुआ है उसके माथे पर या ऊपर से तलवार लटकती हुई कोई इस प्रकार का राजाओं के कुढ़ंग होगा, इस प्रकार का एक तलवार लटकती है। इस परमेश्वर ने किससे क्या करवाना है, कहां करवाना है, वही जानता है। उस तलवार को म्यानमे से निकालने की कोशिश की, आखिर यह भी किसी राजघराने की है, कोशिश की, हीरो जवाहरात से मंडित तलवार थी, लेकिन अंदर से तो तलवार ही तलवार, सोचा नहीं था कि इतनी भारी होगी, हाथ से लुढ़क गई। हाथ से लुढ़कते ही पति के गले पर पड़ी, गला कट गया, लहूलुहान पति तत्काल मृत्यु हो गई, बेहोश हो गई है वह रानी, कोलाहल मच गया। ये मध्य रात्रि के बाद की बात है, सुबह होते ही कोलाहल मच गया। पत्नी पर शक नहीं किया जा सकता कि इसने ऐसा किया होगा, कौन पत्नी करेगी अपने पति के लिए इस प्रकार का शक महंत पर। कहां की कहां बात परमात्मा जोड़ता है, इतना सब कुछ रहस्यमय है, गोपनीय है, गुह्य है, कोई जान नहीं सकता। कल करेंगे चर्चा साधक जन इसके आगे, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।